बोलो श्री सतगुरु
महाराज की
सर्व सुंदर प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी श्रृंगार के अंदर कई बार सुंदर साथ समझते हैं कि शायद राजी महाराज के जो वस्त्र भूषण है उसका वर्णन होगा। श्रृंगार में श्री राजीव राय के अंग अंग का वर्णन है और जो सागर है उसमें उनके श्रृंगार का वर्णन है, श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन है और जो श्यामा जी का श्रृंगार है वही बारह हजार आत्माएं जिनको अपन मुहे कहते हैं, सखियां कहते हैं, उनका वर्णन है। अब लव का तो जरा किसी को आना तो एक बार बोल दो, आगे आ जाओ, क्यों इतनी दूर हो, पूछ लो पहले, आवाज दे के बंद रखो जरा कि किसी को आना है। ए हक हुक्मे ऐसा सुख ना दूजा कोए, पाऊं माशूक के आशक, पिए रस धोए धोए, पिए रस धोए। जो महामती शब्दवाणी में आया है, कई महानुभाव कह देते हैं, महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं टोटली रॉन्ग है। महामती इंद्रावती को उपमा इतले शोभा बख्शी है, जब आप धाम के धनी दाम दुला श्री राज्य महाराज वैक्षातीत श्री राज्य महाराज उनके हृदय में इंद्रावती के हृदय में पूर्ण शक्तियों के साथ विराजमान हो गए, तो जैसे कोई ऑर्डिनरी आदमी होता है कैबिनेट मंत्री चुना जाता है फिर उसको पोर्टफोलियो दिया जाता है, तो इनको सब शक्तियों का पोर्टफोलियो दे दिया गया। क्या मतलब? श्री राज्य महाराज अपनी पूर्ण शक्तियों के सहित अंदर आकर विराजमान हुए, कब? जब मेरते में आए तब। मेरते सुधी फक्त तीन शक्तियां ही अंदर विराजमान थीं, जो सतगुरुदेव चंद जी के तन में श्यामा महारानी जी के साथ थी, एक श्यामा जी, एक राज्य और एक धनी का जोश। वो तीनों शक्तियां देवचंद जी ने जब तन छोड़ा उस तन में विराजमान हो गई। और ये वितक साहब में भी प्रसंग था कि जिस दिन मैं राय ठाकुर उनके चरणों में गए थे प्रणाम करने के लिए, तो उनकी आत्म को देवचंद जी नहीं पहचानते थे कि ये कौन है। देवचंद जी के अंदर राज्य महाराज विराजमान हुए, जब पहले दिन श्याम जी के मंदिर में मुलाकात हुई, सारी पहचान कराई कि तेरा नाम कि हम उनके नाम, मतलब एक माया के जंजाल में हम इतने कायर और बुजदिल हो गए हैं, इतने अपने आप को वीक बना बैठे हैं कि माया की प्रस्तुति के अनुसार हम डले, अरे हमारी बना माया है, हमारे ही धंधे हैं और हमको पकड़ के बैठे, ऐसे धंधों को करना क्या है? गर्स नहीं है। गर्स क्यों नहीं है? अभी तक हमें धनी की पूरी पहचान है, वो दर्द कलेजे में नहीं लगा, मुझे धनी बुला रहे और मैं यहां बिल्कुल नहीं। देखो देखते हैं क्या हुक्म आकेगा, आपको कहेगा वीजा नहीं देते और टिकट नहीं देते, ये मन की वीकनेस है। और फिर कहा मन के हारे हारिए और मन के जीते जीते, ये मन ही अंदर कमबख्त है जो हमें माया में उलझाता है और धन से दूर करता है। अब ये जो हुक्मे 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 कर रखा है ना, अंदर कौन बैठे हैं? इंद्रावती के राज्य साक्षात पांचों शक्तियों से बैठे हैं, वही अंदर बोल रहे हैं अर्पणक से, इसीलिए हुक्मे कह देते हैं कि मानती तू बोल ताकि मेरी कोई पहचान ना कर रहे। तो इंद्रावती कौन से कम है, उनको जैसा हुक्म होता है प्रॉम्प्टन पीछे होता है वैसे वो बोल रही है, महामती हक के हुक्म है बोल रही है, और तू हक के हुक्म क्या बोल रही, तेरे अंदर खुद हक बोल रहा है। जिस दिन ये समझ जाएंगे ताकत आ जाएगी कि हुक्म हुक्म एक पर्दा डाल रखा है। कल तो अभी समय मिलेगा ना, कल आपको हुक्म पैदा कहां से होता है और हुक्म का रूप क्या है उस पर चर्चा दिखाएंगे। ये छठा सागर है, छठे सागर में हुक्म की पूरी व्याख्या है कि उस अंदर साथ हुक्म पुकम कुछ नहीं, हुक्म बड़ा के हाकम, हुक्म बड़ा के हाकम बोलो, तो धनी जो है वो हमारा हाकम है, तो फिर हुक्म तुम्हारे अधीन हुआ कि तुम उसके अधीन हुए? नहीं समझे? मेरा धनी जो है वो हाकिम है और मैं उसकी धनियानी, तो उसका जो हुक्म है चपरासी है ना, नौकरी सर्वेंट को ही तो हुक्म का कहते हैं, चपरासी कहते हैं, तो वो बीवी के लिए हुक्म लगाएगा कि मेरी बीवी को आगे नहीं जाने, बीवी हो दमदार वो हुक्म पुक्म को क्या सा है, कौन है तो चल आने दो साहब को, रात को तेरे भी सस्पेंड करा दिया, तूने बकवास कर दी इसे, हुक्म को डांट के रखो है, हुक्म साइड में खड़ा रहे। महाराज जी हुक्म को कैसे डांटेंगे, सुनो जी भाई, कहते हैं मैंने तुमको हुक्म दे दिया छठे दिन में, मोमना हुक्म तुम्हारे अधीन रहेगा, सो तो दिया मैं तुमको, खुले ना बिन तुम, पर कब चलेगा हुक्म तुम्हारे अधीन, जब मेरी सुध दोगे औरों को तो चलेगा तुम्हारा हुक्म, तुम हुक्म का हुक्म देना, जो कहो गए हुक्म के स्वरूप जबराइल ऐसा करो करके रख देगा, पर जब धनी को पहचाने अपने को पहचाने। आप कह रहे हैं कि सुंदर साहब जी ये जो मैं वर्णन कर रही हूं, जैसा हमारा स्वरूप अब है, सपने में भी हम कैसा स्वरूप देखेंगे, जैसा हमारी ये शक्ल है तो सपने में भी जो हम नया तन देखते हैं तो हु बहू ऐसा ही होता है ना, ये तो है नहीं कि मानो मैं अब सपने ऐसे तो मनुष्य तन में हूं और सपने में मैं टाइगर स्वयं पर ही बन जाता हूं। तो इसलिए कहा है कि ये जो तुम्हें ये तन मिले हैं ये तुम्हारे नकल सपने के हैं और ज्यों के त्यों ही परम धाम में हैं, पर ये सपने के हैं, मिथ्या हैं, पांच तत्वों के हैं, परम धाम में तत्व नूर में है। तो इसलिए अब कहते हैं मैं उनके अंगों का चरण कमल से लेके आंखें कैसी हैं, नाक कैसा है वर्णन करता हूं, पर तुमको उसको संसार का एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह से ना समझ लेना कि हमारे तन में जैसे पांच तत्व हैं, खून है, हड्डियां हैं, मजा है, मेज है, पानी है, ये नहीं, वहां नूर ही तत्व है। और नूर तत्व की शोभा क्या है, क्या गुण है, एक तो सदा वो चेतन है, अनादि है, दूसरा क्या है, आनंदमय है, और तीसरा सुगंधि का है, और चौथा पांचवा कोमलता का है। जैसे यहां अपनी तो हड्डी है ना, अरे पड़ी गया था हड्डी क्रैक थे, वहां ये नहीं, वहां वो ऐसा है कि जहां स्ट्रांग चाहिए वहां स्ट्रांग है और जहां कोमल चाहिए वहां कोमल है, तत्व ही है, नो हड्डी नो ये सब कुछ जो इस शरीर में, वो ना समझना। अब इसलिए इंद्रावती क्यों हक के हुक्म का नाम लेती है कि ये मन ऐसा चंडाल पापी है। अब सवाल है जी, जब ऐसी बात है तो हर चुपाई में हक के हुक्मे क्यों कहा है, ताकि कभी भी मन में अभिमान ना आ जाए कि ये वाणी मैं कह रहा हूं। वो नम्रता के वास्ते हमेशा ही रखना चाहिए कि जो कुछ है भाई राज्य महाराज की मेहर है, हम कुछ नहीं करते। बराबर समझ लगी? अब वो है इसका खुलासा, श्री महामति कहे हक हुक्मे ऐसा सुख न दूजा कोई। बस कि ऐ सुंदर साहब जी ये जो अब मैं आपको वर्णन कर रहा हूं ये इस सुख के समान और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब श्री राज्य महाराज का स्वरूप हमारी आंखों में हृदय में आ जाएगा तो उससे बड़ा सुख देने वाला फिर और कुछ भी वस्तु नहीं। फिर जब हमारी नजर में, हमारे हृदय में, हमारे रोम रोम में वो रहेगा तो संसार का भी कोई दुख आड़े आएगा। और उसके लिए कहा भाई कि दुख तुम्हारे पास क्यों आ रहा है, क्यों बार बार दुखी होते हो, लागोगे जब दुख को तो दुख तुमको, याद करो जब निज सुख, तो ये है निज सुख। एक अंगना के निज सुखों का स्वरूप कौन है, उसका धनी। तो जब धनी के स्वरूप को ही हम नहीं जानते, उनके स्वरूप को क्यों समझी, दोनों समय सुबह और शाम राज्य का स्वरूप और श्रृंगार ही वर्णन कर करके चितवन में बताते थे, ताकि सुंदर साथ के हृदय में और कुछ न आवे तो मूल मिलावा अने राज्य महाराज का सिंहासन और युगल स्वरूप कैसा है, चरण कमल कैसे हैं और उनका श्रृंगार क्या है, अब उनमें से स्टार्टिंग कहां से है, श्री राज्य महाराज के चरण कमल, ऊपर हेडिंग भी क्या है, चरण हक माशूक के उपली शोभा, के श्री राज्य महाराज जो हमारे माशूक हैं, हमारे खावंद हैं, हमारे धनी हैं, उनके चरण कमल की ए ऊपर वाली चरणों की जो पंजे की शोभा है वो क्या है, उसकी शोभा का वर्णन होता है। फेर फेर चरण को निरखिए, ये कि बार बार जो है क्या करो, श्री राज्य महाराज के चरणों की शोभा को ही देखो, क्योंकि जब श्री राज्य महाराज के चरण हृदय में आ गए तो उनका सारा स्वरूप आ गया। फेर फेर बार बार अगेन एंड अगेन चितवन जब करो, पहले श्री राज्य महाराज के चरण कमल, फेर फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट, कि यही रटना हो कि हरदम श्री राज्य महाराज के चरण कमल हमारे हृदय में हमारी आंखों में आए, क्योंकि हमारा जो ठिकाना है, हम रूहों का इस दुनिया में ठिकाना क्या है, राज्य महाराज के चरण कमल, और राज्य का ठिकाना क्या है, मंदिर मस्जिद नहीं, उनका ठिकाना अपने मोमनों का दिल है। तो जब राज्य महाराज के चरण कमल वो तो लाएंगे अपने अर्श में, तो उनका अर्श आत्म का दिल है, तो जब वो उस आत्म के दिल में आ गए तो हमें क्या मिल गया, हमारा अर्श मिल गया, नहीं समझे, समझिए, उनका अर्श क्या है, मोमन का दिल है, वो तो अपने अर्श में आके बैठेंगे, तो जब आएंगे तो उनके चरण कमल तो आएंगे, तो जब राज्य महाराज के चरण कमल मिल गए तो हमें क्या मिल गया, हमारा अर्श मिल गया, ये एक रूप का भाव है। फेर फेर चरण को निरखिए, रू को यही लागी रट, हक कदम हृदय आए, ध्यान के साथ बता चुका हूं उसी को क्लियर कर रहा हूं, जब श्री राज्य महाराज के चरण कमल हृदय में आ गए, अर्थात बार बार आप किसी भी को याद करोगे तो उनके स्वरूप का थोड़ा थोड़ा अनुभव आना शुरू हो जाएगा, तो जब राज्य महाराज के चरण कमल हृदय में आ जाए तब खुल गए अंतर पट, तो राज्य के बीच में और हमारे बीच में जो अंतर था, दूरी थी, हट गई। जब राज्य महाराज के चरण कमल हमारी आंखों में हृदय में आ गए तो राज्य हमारे पास हो गए कि हम दूर हो गए, ये है अंतर के पट का मतलब, जो उसके बीच में और हमारे बीच में दूरी थी, अंतर था, फासला था, जब राज्य के चरण कमल हृदय में आंखों में हर समय समाए हैं तो हृदय के पट आत्म को फिर पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं, जब राज्य महाराज अंदर बैठ गए तो उनकी सारी शक्ति, उनका सारा ज्ञान, उनका सब निजबुद्ध आत्म को प्राप्त हो जाता है, आत्म फिर ऑटोमेटिक ही चलनी शुरू कर देती है। गुण कहते कहूं इन चरण के, अब इंद्रावती कह रही है सुंदर साहब जी, अब इन चरण कमलों से क्या मिलता है, मैं उनके गुण जो है क्या बताऊं कि इन चरणों में क्या क्या गुण हैं। गुण कहते कहूं इन चरण के, आवे न माहे शुमार, गिनती में हो तब तो मैं आपको गिन के बता दूं, श्री राज्य महाराज के चरण कमलों में जो सुख है वो वर्णन करने से बाहर है, लिमिट से बाहर है। यही वास्ते खेल दिखाया, कि राज्य महाराज ने जो खेल दिखाया है इसलिए दिखाया है कि रूहों को मेरी साहिबी की, मेरे स्वरूप की पहचान, एक साहिबी हक की और दूसरा वाहिदत का इशक, ए दिखलावना जरूर रूहन को पहले दिल में लिया, ये अब ले रहे कि राज्य महाराज ने अपनी साहिबी स्वरूप की पहचान कराने के लिए, क्यों, क्योंकि जब निकट कोई रहता है ना तो उसकी रियलिटी धीरे धीरे हो जाती है, और हम क्या समझते हैं कि ये और हम दोनों एक ही कैटेगरी के, फ्रेंडली तो है, तो फिर जो मैं भी कुछ कहना होता ना टॉक के अंदर, तो वो भी आदमी कह रहे थे अरे क्या है, रोज मजाक करते हैं, हमने एक मजाक कर दिया तो क्या। ये सारी बातें रूहें बेन्यास थी, भूल चुकी थी, क्योंकि सदा एक रूप, एक लीला, एक रस, एक भाव अद्वैत है, तो वहां बड़े छोटे का कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए राजीव राय ने दिल में लिया भी इनको कम से कम ये तो पता चले कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी साहिबी क्या है, और इनको तो अपने पराये की भी सुध नहीं, दुख सुख की पहचान नहीं, नफे नुकसान की पहचान नहीं, ये तो इनको जानकारी कुछ देनी चाहिए, इसलिए ये खेल दिखाया। या वास्ते खेल दिखाया, रो देख सी देखन हार। बड़ा शब्द भारी लिख दिया कि हर एक रू भी ना देख पाएगी, रू देख सी देखना, जो इसके लिए तड़पेगी, जो इसकी खोज करेगी, उसको ये चरण कमल अवश्य देखेगी। ये नहीं, राज्य महाराज ने जब ये कह दिया है कि मोमनों का दिल जो है मेरा अर्श है, तो सबके दिल में राज्य महाराज बैठे, गाजर मूली नहीं, मोमिनों नहीं कहा है, मोमिन कहा है। संबंध सबसे निश्चित है, लेकिन किस मोमिन के दिल में आकर के बैठेंगे, जो रूह हो सी देखन उसके दिल को राज्य महाराज स्पर्श करेंगे। और फिर कहा भी है कि अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म और दिल मोमिन नाट मोमिन के आय के अर्श कर बैठे। और यही बात भेद बता देना चाहिए ना, महराज ठाकुर ने भी कभी देवचंद जी के तन में जब राजीव महाराज बैठे थे तो यही रट लगी थी कि भी हमारी जब आत्मा एक है तो इनकी आत्मा को खुलो भैया क्या करो कोई है तो? हाँ यही बात थी कि भी ये कहते हैं हमारा धनी एक है, खेल में भी हम सारे मिलके आए हैं, तो फिर इनका जो धनी है वो इनको परमधाम दिखाता है, तो मेरा धनी मुझको परमधाम क्यों नहीं दिखाता। अब ये पहचान नहीं हुई कि भी सतगुरु तो बनके ज्ञान देता है, लेकिन ये सतगुरु नहीं है, इसके अंदर मेरा धाम का नहीं। इसी को बाद में पश्चाताप किया, हो मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। मैं यही समझती रही क्या मेरे सतगुरु हैं तो आपसे मैं दूर हूं, मैं कर ना सकी पहचान, अब रोऊं याद कर कर जो मारे हित। आप तो प्यार से मुझे सब कुछ देते थे, मैंने नहीं समझा, मैं आपको गैर समझती रही। तो सुंदर साहब जी अब वो चीज है यहाँ पर कि हर एक के लिए तो धनी आए हैं, पर कौन सी रू देखेगी जो होशी देख, जिसको धनी से मिल लेगी, जिनको धनी के स्वरूप की तड़प होगी कि हाय है राजी कहते मैं रूहों के बिना रह नहीं सकता, मैं रह ना सकूं रूहों बिन और रूहें रह ना सके मुझ बिन, पर जब ए सुध आए रूहन को सुध आ जाएगी तो रूह बिना सके मेरे बिना एक खिन भी मेरे से जुदा वो नहीं रह सकती, पर जब तक सुध नहीं आए तब तक क्या होगा। जैसे ठीक है जो जैसा चला रहे हमें उसे कुछ मतलब नहीं, हम क्या समझते हैं भाई सतगुरु देवचंद जी धाम चलेगा, आज उपवास रखो, प्राणनाथ जी महाराज धाम चाली गए, हमने प्राणनाथ और उनको क्या समझा एक बॉडी को उपमा दे दी, और उधर श्यामा जी के लिए क्या लिखा है सुंदर भाई इन फेरे भेजे हैं साथ कारण जी, सुंदर भाई इन फेरे आए हैं साथ कारण जी, पूर्ण आवेश दे धनी अपना अब साथ को ना छोड़े एक खिन्न जी, और हमने तुमको जुदा कर दिया अपने से। फिर हम क्या कहते हैं परमधाम प्राणना जी तो चली गया, और वो क्या कहते हैं अब साथ ना छोड़ू एकला, साथ मुझे छोड़े क्यों, मेरा कहा साथ ना लो पे, मैं जो सुंदर साथ को वाणी के द्वारा कहूंगा, जो सुंदर साथ है जो परमधाम की आत्मा है वो उससे कभी भी इधर उधर नहीं फिरेगी चाहे मर मिटेगी, और मैं भी क्या करूंगा साथ कहे करूं मैं क्यों। और तुम तो हुक्म को कहते हो, राजी कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम हूं ना, तुम मुझे बोलो क्या कराना चाहते हो, मैं तुम्हारे काम करूंगा, हम कहते हैं मुझे हुक्म ने रोक दी, और ये इंद्रावती ने पहले जब हादसे में मिली और कटौती में पड़ी है दादा दसवें व्याकरण को कहते हैं और राज्य में रहे पोते प्रकट पधारे छो और आड़ा देव से ब्रज निवास हम आपसे मिलना चाहते हैं तो कहते हो देखिए वृंदावन की लीला को रास करो आड़ी का लीला देते हो। अरे इंद्रावती सो परदास सो की दमन दियो तेनो जो आप मैं तुम्हारी पत्नी और पत्नी से 420 करते रहे भाई पत्नी हो मुझे जो धोखा देते रहे कि मैं वो हूं वो तुम्हारा प्रतिबिंब है आपो पोल खावी मारा वाला दर्पण दाखो छोकरा ना दर्पण त्यासो काम पड़े जा रहे कंकन पहना मेरे सामने मेरा पति बैठा है और वो मुझे कहे ओ माय डियर वाइफ इफ यू वांट टू बी देयर इज माय फोटो प्लीज ले लो उसको गले में लगा लो तो चलेगा पति कहे चिंता मत कर मेरी फोटो रखी ना घर में मैं जा रहा हूं प्रदेश में तो क्या बात हुआ उसे मिलाकर इंद्रावती कहते किससे बोल रहे हो आप तो बोलो खाली तुमने पहचान कराई है कि तुम धाम के धनी हो और रास वाली फक्त तुम्हारी लीला थी तो तेरी लीला को पकड़ू मैं धनी को छोड़ के तेरी फोटो को पकड़ने जाऊंगी मुझे जवाब दो पत्नी से ये भेद तुमने क्यों रखा यह है मदा सुंदर शाह जी धनी के स्वरूप की पहचान की उसलिए कहते हैं कि राज्य सबको मिलेंगे पर कौन आत्म देखेगी जो होशी देखन अब जो माया को देखने में डूबे पड़े हैं 36 महीने माया के बनाते फिरते हैं वहां धनी क्या करें धनी तो बार बार हमको बुलाते हैं धनी तो बार बार हमें अपनी वाणी देते हैं धनी तो बार बार हमें सुख देते हैं लेकिन हम ही ना लेना चाहे हमारे पास ही फुर्सत ना हो तो धनी क्या करें भाई बोलो वर्णन कर चरण की अब स्टार्ट कर रहे कह लो भाई अब मैं चरणों का वर्णन भी कर देती हूं ताकि तुम्हारे दिल में हाम न रह जाए कि राज्य के चरण कमल कैसे प्राप्त हो सकते वर्णन करती हूं वर्णन करत हूं चरण की अर्श सूरत हक जात अब परम धाम के नूरमय स्वरूप जो श्री राज्य का है उसका मैं वर्णन करती हूं आपके सामने ए नेक कहूं हक हुक्मे ऊपर कह दिया ना मैं करती हूं अपना किसे क्या कहती है भाई मैं नहीं कर रही है हक के हुक्म से कह रही है कहीं कम वक्त इस मन में ये ना आ जाए कि मैं कर रहा हूं इसलिए हक का हुक्म लगा देते हैं अब नेक कहूं वो भी थोड़ा सा नेक मैंने थोड़ा सा वर्णन करती हूं और वो भी राज्य के हुक्म से करती हूं ए नेक कहूं हक हुक्मे शोभा शब्द ना इत समात कि जो श्री राज्य मराय के स्वरूप की शोभा है वो यहां के शब्दों में वर्णन हो ही नहीं सकता कितना कितना भी हम वर्णन कर लेंगे तो भी उस रूप का वर्णन शब्दा इसलिए शब्दा तीत कहा है इसलिए अक्षरा तीत कहा है कि वो शब्दों में वर्णन नहीं आ सकता फिर भी कहते हैं कि वर्णन ध्यान के साथ 15 मिनट में बंद कर दूंगा ढीले मत होइए एक घंटे से ज्यादा ये चर्चा समझ में नहीं आ सकती फिर सेकंड टाइम बैठ जाएंगे चिंता मत करिए वर्णन किया है अर्श का वर्णन किया अर्श का मिसाला इत का है कि कंपैरिजन जब मैंने यहां करना किया तो मैं किससे कंपैरिजन करके बताऊं कि राज्य का स्वरूप क्या है इसलिए 8 सागर वर्णन कर दिए क्यों ये दरिया जो सागर ओशन होता है इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई का नाप तोल नहीं हो सकता इसलिए सागर शब्द वापरा है समझाए ना कि भाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता तो उसको सागर की उपमा दे दी ए नेक कहूं हक हुक्मे शोभा शब्द ना इत समात कदम तली अति उज्जल मतलब इतनी उज्जल है वो भी अति कहके उज्जल शब्द तो लिख दिया क्योंकि यहां उज्जल से और ज्यादा कोई शब्द है नहीं लेकिन ये नहीं चलता खाली उज्जल से इसलिए कह दिया कि वो इतना उज्जवल है इतना उज्जवल है इतना गौर है यहां तो जरा सफेद चमड़ी हो और जरा रेडिश रेडिश है ब्यूटी ब्यूटीफुल है बस ये कह दिया ना खत्म वो वर्णन ही नहीं हो सकता कि कैसी ब्यूटी है कैसा गौर गलस्थल है कैसे चरण कमल की शोभा है अति उज्ज्वल ही कहते कि बस भाई मेरी कलम आगे कोई शब्द कोश में ही शब्द नहीं है तो क्या कह दो, अति उज्ज्वल है। कदम तली, चरणों का निचले भाग को तली कहते हैं, सब जानते हैं लेकिन फिर भी हिंदी का शब्द है ना तली, मैंने एक पग का निचला भाग होता है ना इसको तली बोलते हैं, वो उसकी शोभा स्टार्ट हो रही है। कदम तली अति उज्जल, निपट नरम रंग लाल। निपट नरम की इतनी नरमाई है कि कितना का नरम है वो वर्णन नहीं हो सकता। और रंग क्या है, रेडिश, गौर है रेडिश। यहां तो हम लोग अपने को बनाने के लिए इधर उधर लाल लून से पैसे बोल जाते हैं, ऑटोमेटिक नेचुरल है कि उसका वर्णन नहीं, उपमा ही नहीं दी जा सकती है कि वो कैसा लाल है। अब जिस समय बारह थंबों का वर्णन सुनोगे आगे तो एक एक लाल लाल रंग के भी कई कई रंगों का जो है वर्णन शोभा आती है। कदम तली अति उज्ज्वल, निपट नरम रंग लाल। अब कौन देखेगा, रोए आशक इन माशूक की। कौन रोए, जो अपने धनी की आशक हैं, आशक ही माशूक की शोभा को वर्णन कर सकते हैं, दूसरे क्या जाते। तो यहां के टीवी में देखे ना, होठों की शोभा गुलाल की पांखड़ी है, ये आंकड़ी है, ये हिरण की आंख है, क्योंकि इससे सुंदर कोई चीज नहीं होती है। तो यहां के लोगों ने अगर ऐसे ऐसी उपमाएं दी हैं, अब इंद्रावती कहते हो सुंदर सर जी मेरे पास शब्द नहीं है, जो राज्य का आशक है वो ही अपने माशोक की सुंदरता शोभा को जान सकता है, वर्णन नहीं हो सकता। ध्यान देना, बड़ी गहरी बात है। आशक तभी तक कहता है, एक बार राज्य मिल जाना, पूछे हमारा क्या दोस्त। माशोक के लिए बहुत सारे उलाने होते हैं, लेकिन जब आमने सामने आ जाएगा तो सब कुछ याद भूल जाएगा, क्योंकि जब नैनों से नैन मिल जाएंगे तो स्वरूप दोनों का एक होंठ हो जाएंगे बन। इसलिए कहते हैं कि जो राज्य महाराज के आशक हैं भाई, वो जान सकते हैं कि उनके माशूक का चरण कमल जो है वो कितना प्यारा है, कितना लाडला है, कितनी कोमलता है, क्या रंग है, क्या शोभा है। वर्णन जरूर वो करवा रहे हैं, मैं कर रहा हूं, पर मैं इतना करने पर भी सेटिस्फाइड नहीं। पर यहां वर्णन वो करवा रहे हैं तो चुप कहे से कुछ कहा भला, जो कुछ कह रहे हैं इतने को ही अधिक समझ करके राज्य में रखिए स्वरूप को हृदय में लेना। रुए आशक, कौन, जो रुए श्री राज्य में राय के चरणों की आशक है, जिनको तड़प है अपने पिया से मिलने की, वो बिल बिल तड़पती रहती हैं। इस यहां क्यों का रास में एक खिन के लिए राज्य जुदा हुए, तो वनों में जब चली घूम ढूंढने तो बेलें पेड़ों के साथ, जो कोमल बेल होती है ना, टूट जाएगी पर वृक्ष से जुदा नहीं हो पाती। उनको देख करके आत्मा रोती हैं कि हो बेल, तुम हमारे से अच्छी हो कि तुम अपने पति से चिपटी पड़ी हो, और हम ही दुष्ट हो गई कि हमने अपने पति को छोड़ दिया। ऐसी ऐसी चीजें रास के अंदर वर्णन है। सुंदर साहब जी उस दृष्टि से पढ़ के देखो, रास लीला हमारे धनी ने की थी, लीला थी, अब तो नहीं है ना, अब तो धनी हमारे साथ आए हुए। एक एक चीज को समझिए। रोए आशक इन माशोक की, एक कदम छोड़े ना नूर जमाल। कौन आशक हैं, जो कभी भी श्री राज्य महाराज के चरणों से जुदा ना होए, वो आशक है। आशकों की कैटेगरी क्या है कि जो परम धाम की आत्मा है, जब उनको पहचान हो जाती है तो माया आड़े नहीं आ सकती। ज्यारे धनी साए थाए, त्यारे झक मारे माया। तो धनी कब साए थाते हैं, जब धनी के स्वरूप की पहचान हो, और हर वक्त जो है दृष्टि हमारी उनके चरणों में रहे। ठीक है, संसार का काम काज देह से करना है, चित्त धनी के चरणों में लगा के रखिए तो कभी भी उनके चरण हमारे से दूर नहीं हो सकते। ध्यान के साथ अब क्या कह रहे हैं, कही सूक्ष्म सूरत अमृत की। ध्यान देना कि राज्य का स्वरूप क्या है, किशोर। अमृत किसको कहा है? किशोर। जो शास्त्रों में प्रमाण है पर दुनिया में मंत्र बोल देती है, चिरादित्यम किशोरांगन परे धामन विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम लिखा है, पर कोई जानता क्यों नहीं कि उनका स्वरूप क्या है? सूक्ष्म। जो सूक्ष्म स्वरूप होता है वो आंखों से नहीं दिखता, वो आत्म से ही अनुभव में आता है। सूक्ष्म, हाँ, कई सूक्ष्म सूरत अमृत की, एक कदम भी तिन माफक। इसलिए ये जो चरण कमल स्वामी जी कहते हैं, मैं अवर्णन कर रहा हूं, ये चरण भी उनके माफक, वही सूक्ष्म स्वरूप और वही तेजोमय स्वरूप के चरण कमल हैं। रस रंग शोभा सलोकी, अब उसका रस और रंग और शोभा और सलोकी क्या कहते हैं? बनावट कि कैसे हैं, इसका वर्णन ध्यान के साथ गौर। हाँ, रस रंग शोभा सलोकी, देख अर्श शहूरे हक। अर्श की यदि बुद्धि से आप देखोगे पराशक्ति से तो आपके अनुभव में आएगा। सपने वाली बुद्धि से अनुभव में भी लाना चाहोगे तो राजीव राय का स्वरूप कभी भी अनुभव में आएगा नहीं। रस रंग शोभा सलोकी, देख अर्श शहूरे हक। अर्श के शहूर से, अर्श की जो है अकल से, अर्श की ही बुद्धि से राज्य के स्वरूप को देखोगे तो ये जो माशूक है उसके स्वरूप को जो आत्माएं तड़पती हैं, निश्चय राज्य राय का स्वरूप उनके हृदय में आता है। लांक सलोकी, दो कदम की। लांक कहते हैं जैसे इकाइयों के चरण पर फ्लैट होते हैं ना बिल्कुल यूं, लेकिन राज्य का जो चरण है वो ऐसे है, इसको कहते हैं लांक। लांक मैंने यहां से ठहरा। अब देखो ना, यही इंसान के चरण देखो, हरे के चरण एक नहीं होते, कईयों के पग क्या होते हैं? पंजा लगता है, रेडी लगती है, बीच का भाग नहीं होता, उसको कहते हैं लांक। अब उसका वर्णन कर रहे हैं कि श्री राजीव राय के चरण कमल की जो नीचे की लांक है उसका वर्णन है। लांक सलोकी, दो कदम की, राजीव राय के दोनों चरणों की जो लांक है उसकी शोभा क्या है? लाल एड़ी निपट नरम। उसके बाद पहले पंजा, फिर लांक, और उसके बाद एड़ी जो है अति नरम है, हार्ड नहीं है, और उसका भी लाल ही रंग है। लांक सलोकी, दो कदम की, लाल एड़ी निपट नरम है। अब रंग कैसा है? गौर रंग रस भरे, गौर कह दिए बस। अब जी कहते हैं कि भाई उसमें क्या रस है, वो तो आशक जान कि जो उन चरणों को चूम चूम करके अपनी सुरता के द्वारा उनका अनुभव करते हैं, ये चीज वही जानते हैं। गौर रंग रस भरे, ए जुबा क्या कहे सिफत कदम, कि मेरी ये जिभ्या क्या उसकी शोभा का सिफत महिमा गा सकती है। ये तो जबरन राजी महाराज अंदर से खुद ही कहलवा रहे हैं जो वर्णन हो रहा है, अन्यथा वो चीज वर्णन करने योग्य ही नहीं है। बस करेंगे, बाकी कर लेते हैं इसके बाद जो बेटे। जुबान क्या कहे सिफत कदम,
जुबान क्या कहे सिफत कदम,
लाक सलोकी दो कदम की,
लाक सलोकी दो कदम की,
लाल एड़ी निपट नरम,
लाल एड़ी निपट नरम,
गौर रंग रस भरे,
गौर रंग रस भरे,
जुबा क्या कहे सिफत कदम,
जुबा क्या कहे सिफत
सिफत, जुबा क्या कहे सिफत कदम।